प्रवचन सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति परम पूज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। सरस्वती की कृपा प्रसाद से और पूज्य माता जी की छत्र छाया में ये स्वाध्याय करते हुए हर क्षण सम्यक दर्शन के विषय में चिंतन रहता है। आप लोग भी जरूर चिंतन करते होंगे ये सम्यक दर्शन पंचम काल के अंदर जिस मानव को हो जाए समझो कि उसके लिए पंचम काल भी श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। अगर चतुर्थ काल में भी जन्म लेकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो चतुर्थ काल भी हमारे लिए बेकार था, और पंचम काल में भी अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है तो समझो अपने लिए पंचम काल भी चतुर्थ काल से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग तो इस काल में भी निरंतर चल रहा है, पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा, ये स्वीकार करना है। और मोक्ष मार्ग के ही कारणों में सम्यक दर्शन सबसे प्रबल कारण है, क्योंकि कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। और इन तीनों की एकता में सर्वप्रथम रोल है सम्यक दर्शन का। उसी के कारण ज्ञान में सम्यक पना आता है, उसी के कारण चारित्र में सम्यक पना आता है। यदि दर्शन में सम्यक पना ना आए तो समझो ज्ञान और चारित्र भी हमारे कहे गए हैं कि यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, यदि इनको उल्टे कर दें, सम्यक की जगह मिथ्या कर दें, तो मोक्ष मार्गा की जगह संसार मार्गा बन जाएंगे। सम्यक शब्द लगा है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के भव पद्धति माने संसार की पद्धति को, संसार की संतति को बढ़ाने वाले होते हैं। बहुत अच्छा स्वाध्याय आप लोगों ने सुन रखा है कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है, नरक गति में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, तिर्यंच गति में भी, मनुष्य गति में तो है ही, और देव गति में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। बाह्य निमित्तों से और अंतरंग में कर्मों के क्षय से, क्षयोपशम से, उपशम से सम्यक की प्राप्ति होती है। आपने पेज नंबर 25 तक खूब अच्छे से स्वाध्याय किया, और अब हम पेज नंबर 26 पर चलेंगे। इस प्रकरण के अंदर सबसे प्रमुख बात ये बताई कि दर्शन मोनी के तीन भेदों में सम्यक प्रकृति के क्षय में कुछ कार्य शेष रहने पर ये कृतकृत्य भेदक बन जाता कहलाता है, माने अनंतानुबंधी चतुष्क, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन छह प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, और सम्यक प्रकृति के क्षय में इच्छा सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है ना, तो सम्यक प्रकृति के क्षय में अभी कुछ पूर्ण अपूर्णता है, इसलिए उस समय की स्थिति उसकी होती है कृतकृत्य भेदक। और उस समय कदाचित आयु के पूर्ण होने से मरण को प्राप्त हो जाता है तो वह पूर्व में बद्ध हुई आयु के अनुसार किसी भी गति में जाकर वहां उस क्षायिक सम्यक्त को पूर्ण कर लेता है। ये विशेष नियम है कि जिसका अभी क्षायिक सम्यक दर्शन यहाँ पूर्ण नहीं हुआ है, केवली सुत केवली के पाद मूल को भी पा करके और छह प्रकृतियों का, छह कर्मों का तो छह कर लिया, नाश कर लिया, लेकिन एक प्रकृति का अभी कुछ काम शेष है, तो वो काम जो है आगे जाकर के दूसरी गति में पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर एक शंका होती है, माने प्रश्न होता है कि केवली, सुकेवली और तीर्थंकर का सानिध्य सम्यक तो प्राप्ति के लिए बाह्य निमित्त है या अंतरंग निमित्त। पीछे आपने कल सुना ना कि केवली, सुकेवली और तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में ही क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तो ये बाह्य निमित्त है क्या अंतरंग निमित्त है केवली आदि का पाद मूल? तो कह रहे हैं ये बाह्य निमित्त है। अंतरंग निमित्त तो सात प्रकृतियों का क्षय होना है, यानी आत्मा के अंदर जो प्रक्रिया चलती है वह अंतरंग निमित्त है, और भगवान का सानिध्य मिलना, केवली का सानिध्य मिलना, वहां भावों की विशुद्धि होना, ये बाह्य निमित्त है, बाहर में दिखता ही है कि हमें भगवान का सानिध्य मिला और अंतरंग में कर्म प्रकृतियों की उपशांति हुई, क्षय हुआ, तो छाई सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये समझना कि केवली, सुकेवली का पादमूल जो है वो बाह्य निमित्त है। अगली शंका है, क्या बाह्य निमित्त इतना बलशाली है कि इसके बिना दर्शन मुनि का क्षय ना हो सके? प्रश्न उठते हैं, और प्रश्नों को उठा करके अनेक भव्य प्राणियों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य देव विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से उत्तर देते हैं कि आपका अच्छी तरह से समाधान हो जाए। तो कह रहे हैं इतना बलशाली हो जाएगा बाह्य निमित्त कि उसके बिना अगर केवली, सुकेवली का पादमूल नहीं मिला तो अंतरंग में इन दर्शन मोनी का क्षय नहीं हो पाएगा। शंका स्वाभाविक है कि केवली, सुकेवली भगवान का पादमूल अब तो मिल गया तो उसके बिना कर्मों का क्षय ही नहीं होगा, क्षय सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, तो इससे तो बहुत ही उसका बलशाली होना सिद्ध हो गया। समाधान करते हैं, आगम श्रद्धालुओं के लिए तो यह स्पष्ट ही है, केवली आदि के पाद मूल के निकट ही दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी के नाश करने की योग्यता आ सकती है, अन्यथा नहीं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बच्चे बच्चे को समझने के लिए बड़ा आवश्यक है। जब ऐसा निमित्त मिलेगा तभी जा करके अंतरंग के अंदर जो विशुद्धि आएगी उस विशुद्धि के द्वारा ही सातों कर्म प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कम नहीं है। देखो कमठ की पर्याय का जीव जो है उसने कितना भाव भावांतर का बंद कर लिया, अनंतानुबंधी क्रोध उसने मन में बिठा लिया, उसका भाई मरुभूति आया था उसे शांत करने के लिए कि भाई अब चलो जो कुछ हो गया हो गया, लेकिन उसके ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध का उदय रहा कि पता नहीं क्या मेरे और सजा देने के लिए आ रहा है, अभी तो राजा ने दिया है। भाई कमट और मरुभूति के बारे में तो जाना है कि कमट ने 10 भावों तक तो पार्श्वनाथ यानी मरुभूति के जीव को जो आगे जाकर पारसनाथ बने उनको कितना सताया, कितना कष्ट दिया। तो कह रहे हैं कि जब अंतर बाह्य निमित्त मिलते हैं तो उसके कारण ही अंतरंग में कर्मों को क्षय करने की योग्यता आती है। देखो आप किसी बगीचे में चले जाओ, बगीचे में अच्छे खूब फूलों की सुगंधी आती है, फूलों की सुगंधि बाह्य रूप से आ रही है लेकिन अंतरंग में कितनी शांति मिलती है कि बैठ करके अपन उस खुशबू के साथ साथ मन को शांत करके अगर मेडिटेशन करने के लिए किसी पार्क में पहुंचे हैं तो वहां का बाह्य वातावरण हमारी आत्मा को प्रेरित करता है कि ध्यान में लीन हो जाओ। तो ये बाह्य निमित्त तो हुआ अंतरंग को साधने में। कहीं किसी पेट्रोल पंप के पास से आप निकलते हैं, कहीं पास से कोई मांस वगैरह का ट्रक निकल जाता है, बिहार करते हुए देखते हैं कितनी दूर तक चला गया लेकिन उसकी बदबू छोड़ जाता है, उसकी दुर्गंध छोड़ जाता है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये सब बाह्य निमित्त अंतरंग को अच्छा खराब अनुभव कराने में निमित्त, प्रबल निमित्त होते हैं। ऐसे ही जिनका औरा ही सफेद रंग का निकलता है, जिनका औरा एकदम स्वच्छ होता है, उनके औरे के पास जाकर केवली शुद्ध केवली या भगवान के समोसरण में जाकर अपने अंदर के जो कर्मों की कालिमा है उसको साफ करने की योग्यता उस समय भावों में आती है। और वो जो साफ करने की योग्यता है वही है दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय। जो अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं होने देता उसका नाम है दर्शन मोहिनी है। जो चारित्र को प्रकट नहीं होने देता उसका नाम है चारित्र मोहिनी है। लोग चाहते हैं कि हम व्रत ले लें लेकिन उनके कदम पीछे हट जाते हैं। कहीं माँ ने कहीं संबंधियों ने थोड़ा सा जोर लगा रही, अभी पता नहीं तुम्हारे को नियम लेने का समय नहीं है, कभी टूट जाएगा तो क्या होगा, अभी तुम कैसे निभाओगे। और एक है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, नियम ले लो और इससे आगे में अच्छी गति बन जाएगी। तो बाह्य निमित्त पड़ते हैं उनका अंतरंग पर प्रभाव पड़ता है। तो जब शंका ये की गई तो आचार्य देव ने उसका उत्तर दिया कि ये स्पष्ट है, अगर आपको आगम पर श्रद्धा है, आपको गुरु वचनों पर श्रद्धा है, तो आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि जब तीर्थंकर भगवान का पादमूल मिलेगा, केवली श्रुत केवली के चरणों के निकट हम जाएंगे, तो वहीं पर ऐसी योग्यता मिलेगी कि दर्शन मोनी मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति अनंतानुबंधी चतुष्क इनका क्षय करने की योग्यता आत्मा के अंदर आ जाएगी, अन्यथा नहीं आएगी। आप मंदिर क्यों जाते हैं? इसीलिए ना कि सामने भगवान का भी हमारे लिए माध्यम बनता है। कुछ लोग कह देते हैं हमने तो घर में मंदिर बना रखा है, भैया कैसा मंदिर, फोटो लगा रखी है माता जी, उसी के सामने आरती कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। नहीं, फोटो एक सिंबॉलिक हो सकता है, बच्चे को बता सकते हैं देखो हमारे भगवान ऐसे होते हैं, लेकिन साक्षात भगवान के स्वरूप में जिन प्रतिमाओं पर पंच कल्याण के संस्कार किए गए, ऐसी प्रतिमाओं को जिन मंदिरों के अंदर विराजमान किया जाता है, उन मंदिरों में जाकर जो भाव बनते हैं वो आपके फोटो के आगे कभी भी नहीं बन सकते। वरना सब लोग यही करते, हमारे पूर्वजों ने जिन मंदिर बनाया आज से 500 साल पहले जीवराज पापड़ीवाल नाम के व्यक्ति हुए, जिन्होंने 1 लाख प्रतिमाएं बना करके और उनकी प्रतिष्ठा कराई। हर एक गांव में समझती हूँ हिंदुस्तान के अंदर शायद ही कोई गांव कोई मंदिर ऐसा होगा जहां पर उनकी प्रतिमा नहीं हो। आप नजदीक जाकर प्रशस्ति पढ़ लेना, जो प्राचीन सफेद रंग के पाषाण की प्रतिमा हो, लिखा हुआ होगा विक्रम संवत 1548। विक्रम संवत 1548 का युग इतना महान रहा कि हर एक मंदिर के अंदर उन्होंने ले जाकर बैलगाड़ियों से उन प्रतिमाओं को विराजमान किया। इसलिए कि जिन मंदिरों के अंदर विराजमान हो करके ये प्रतिमाएं न जाने कितने भव्य प्राणियों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करा देंगी। आज ये मंदिर या तीर्थ क्यों बन रहे हैं? ज्ञानमती माता जी आज अयोध्या के इतिहास को क्यों साकार कर रही हैं? हर आने वाला भव्य प्राणी जानेगा कि भगवान ऋषभ देव तो तीर्थंकर थे ही, इनके जो 101 पुत्र हुए सबने दीक्षा लेकर उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया। समझ गए? तो ऐसा मंदिर जो कहीं नहीं बना उसको देखकर न जाने कितने भव्य प्राणियों के भाव बन जाएंगे, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। हम लोग कभी कभी चिंतन करने के लिए बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि ज्ञानमती माता कहाँ से खोज खोज कर लाती। बोले एक मंदिर और बनाना है, कौन सा? 923 पौत्रों का मंदिर यहाँ बन रहा है। समझे? भगवान ऋषभ देव के पौत्र थे, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे जो जन्म से ही गूंगे थे, लेकिन पहली बार ही भगवान ऋषभ देव के समोसरण में गए, एकदम सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ और बोलने लग गए। जीवन में कभी बोले नहीं, वे निगोद से आए थे। समझे अमरचंद जी? निगोद से, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है प्राणी, ये एक रेयर केस है, केवल आदि पुराण के अंदर ही वर्णन आया है। और बृहत द्रव्य संग्रह की टीका में तो है कि नित्य निगोद से निकलकर एक बार वो दो तीन इंद्रिय जीव बने और उसके बाद मनुष्य पर्याय धारण की, जो भी हो वे जन्म लेते मूक थे, गूंगे थे, कितना दुख हुआ होगा सोचो चक्रवर्ती को, जिनके पास छह खंड का वैभव है उनके पुत्र सारे गूंगे, और जैसे ही भगवान के समक्ष शरण में गए उनके साथ साथ उनके सारे पुत्र गए, और वहां की महिमा देखो, प्रबल निमित्त देखो कि गूंगे सब बोलने लग गए, और एकदम बोलने लग गए तो तुरंत ही उन्होंने बोध को प्राप्त करके जनेश्वरी दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के ऐसी तपस्या की कि उसी भाव से मोक्ष चले गए। ये इतिहास अयोध्या की धरती पर दिखाया जाएगा और उनका मंदिर सामने को बन रहा है। यह इतिहास कि भगवान ऋषभदेव स्वयं में तो महान थे ही, लेकिन उनका परिवार भी कितना महान था, उनके पुत्र पुत्रियां पौत्र सब कितने महान थे कि संसार के सुखों को भोगने के बाद उनको नश्वर समझ करके परित्याग कर दिया, और दीक्षा धारण के लिए उनकी पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, लोग कह देते हैं कि उन्होंने इसलिए दीक्षा ली कि हमारे पिता को हमारे पतियों को नमस्कार करना, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने अपने निज के वैराग्य से दीक्षा ली। भगवान ऋषभदेव अपने माता पिता को नमन नहीं करते, भगवान ऋषभदेव या तीर्थंकर भगवान किसी गुरु को नमन नहीं करते, किसी को भी नमन नहीं करते, तो अपने दामाद को क्या करते? आप लोग अपने दामादों को नमन कर नमस्कार करते हैं क्या? नहीं ना, दामाद पिता मान करके अपने इनलाज को नमस्कार करता है कि ये भी हमारे माता पिता हैं। तो ये भ्रांतियां मत रखना, कोई पूछे ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा क्यों ली, बताना हमारा आदि पुराण कहता है कि ब्राह्मी सुंदरी ने अपने वैराग्य से कि हमारे पिता जगत पिता हैं, हमें संसार में नहीं फंसना है, दीक्षा लेकर के और स्त्री पर्याय का छेद करके मोक्ष जाना है। तो महानुभाव यही तो धवलाकार कह रहे हैं, धवला की छठी पुस्तक के एक एक पंक्ति का स्वाध्याय किया पूज्य माता जी ने, और अपनी सिद्धांत चिंतामणि टीका जो आज 1200 साल के बाद किसी ने षटखंडागम की टीका लिखने की हिम्मत की है, साहस किया है, उन्होंने भी इन चीजों को लिया है कि हम चाहें तो इन निमित्तों को प्राप्त करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो समाधान में यही कहा कि आगम श्रद्धालु के लिए स्पष्ट है, केवली के पाद मूल के निकट ही दर्शन मोह और अनंतानुबंधी को नाश करने की योग्यता आ सकती है, अन्यथा नहीं आएगी। किसी साधारण संत के पास भी बैठेंगे तो छाई सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं आएगी, छाई उपशम सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन छाई सम्यक दर्शन के लिए केवली, सुकेवली, तीर्थंकर भगवान, इनका पाद मूल, इनका चरण सानिध्य आवश्यक है। इसलिए महानुभाव थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय हो रहा है, कुछ कुछ लाइन आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उन लाइनों को हृदयंगम कर रहे हैं और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको छोटा छोटा स्वाध्याय करा करके ही और बिल्कुल सम्यक दर्शन के अंदर दृढ़ करना चाहती हूँ कि अपना जो मोक्ष मार्ग आज पंचम काल में मिला है वह निराबाद हो जाए और सम्यक दर्शन हमारा इतना दृढ़ हो जाए कि भव भवांतर में भी छूटे ना, जब तक मोक्ष को हम प्राप्त ना कर लें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना, और भी अन्य शंका समाधानों के माध्यम से हम आपके मार्ग को सरल करते रहेंगे, ज्ञान के रास्ते खोलते रहेंगे। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि माता जी इसका परीक्षा इसकी कब होगी, हम आपको परीक्षा की घोषणा करेंगे 25 जुलाई के बाद, क्योंकि अभी 22 जुलाई तक अयोध्या में चातुर्मास स्थापना, गुरु पूर्णिमा, वीर शासन जयंती और दीक्षा महोत्सव का बड़ा कार्यक्रम है, उसके पश्चात इसका स्वाध्याय बराबर चलाएंगे, और सम्यक दर्शन का चैप्टर कितने दिन में समाप्त होता है इस विषय को लेकर के और हम आपके परीक्षा की घोषणा करेंगे। जावान